हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुति ने बुरा मुंह बनाया, फिर अपने गीले बालों को झाड़कर सुखाया, क्लेचर लगाया और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे पहुंचते ही बाकी नौकरों ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, फिर आपस में बातें करने लगे। ध्रुति ही उनके बातचीत का विषय थीं, पर ध्रुति ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब तो ये रोज का ही हो गया था। कब तक रोती रहती? जब दर्द और जिल्लत हिस्से में आ ही गई थी तो अब अपनी किस्मत और हालातों से समझौता करने का फैसला ले लिया था उसने, और कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। बाकियों के उलट शीला ने आज भी आदर सहित उसे मॉर्निंग विश किया और ध्रुति उसके साथ किचन में चली गई। लगभग एक घंटे बाद अर्णव नीचे आया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। ध्रुति पहले से ही वहां खड़ी थी और टेबल पर खाना भी लगा हुआ था। काम करने या खाना बनाने से उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अपने घर में भी ये सब करती थी। परेशानी थी तो अर्णव और उसके रवैये थे। जैसे ही अर्णव की नज़र ध्रुति पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने भौहें सिकोड़कर उसे घूरा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मंगल सूत्र कहाँ है तुम्हारा, और तुम्हारी मांग सुनी क्यों है? सिंदूर क्यों नहीं लगाया तुमने? ध्रुति ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए निगाहें झुकाकर देखा। गले में मंगल सूत्र नहीं था। फिर उसने अर्णव को घबराई निगाहों से देखते हुए कहा, वो मंगल सूत्र बालों में उलझ रहा था तो उतार दिया था, फिर जल्दबाजी में पहनना भूल गई। आदत नहीं है, इसलिए सिंदूर लगाना ध्यान नहीं रहा। ध्रुति को डर था कि कहीं अर्णव यहाँ नौकरों के सामने ही कुछ तमाशा न कर दे, इसलिए उसने तुरंत सफाई पेश की। पर अर्णव के चेहरे के भाव जरा भी सामान्य नहीं हुए। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आज हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइफ हो तुम मेरी, जिसकी निशानी 2400 घंटे तुम्हारे गले और मांग में मौजूद होनी चाहिए। जाओ जल्दी, जाकर मेरी वाइफ बनकर आओ। अर्णव की इस बेतुकी जिद पर ध्रुति खींच उठी, पर कुछ नहीं कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वो वापस लौटी। अर्णव ने एक ईर्ष्यालु मुस्कान लबों पर सजाते हुए उसे देखा, मानो अपनी जीत के गर्व में चूर हो। वो आकर राजा महाराजाओं की तरह ठाट से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने तीखी निगाहों से ध्रुति को घूरा। ध्रुति ने तुरंत उसकी प्लेट में खाना सर्व कर दिया। अर्णव अब भी उसे घूरता रहा और आंखों से ही बैठने का इशारा कर दिया। ध्रुति उसके साथ बैठना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ सोचते हुए बैठ गई। सिर्फ बैठने को नहीं कहा है, साथ खाने को कहा है। अर्णव ने उसे खाली बैठा देखकर सख्त लहजे में कहा। ध्रुति ने बिना कुछ कहे अपने लिए खाना निकाल लिया, फिर तिरछी निगाहों से अर्णव को देखते हुए बोली, खाने के बाद आप एक मिनट ऊपर चलेंगे, कुछ बात करनी है मुझे आपसे, अकेले में। अर्णव ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिना कोई जवाब दिए खाना खाने लगा। ध्रुति ने फिर से कहा, जरूरी बात है, पहले खाना खाओ, उसके बाद बात करेंगे। अर्णव ने खाना खाते हुए ही जवाब दिया। ध्रुति का मन बिल्कुल नहीं था, पर शायद वो अभी अर्णव को नाराज नहीं करना चाहती थी। कल गुस्से से बात करके देख लिया था कि यहाँ गुस्से से बात करने से बात बनने के बजाय बिगड़ेगी, इसलिए वो शांत बनी रही और जैसे तैसे निवाले गले के नीचे धकेलने लगी। अर्णव का खाना खत्म हुआ तो उसने हाथ धोने के बाद निगाहें आसपास घुमाई। उसके आंखों के इशारे को समझते हुए सारे नौकर वहां से चले गए। अब वहां बस ध्रुति और अर्णव ही थे। बोलो क्या बोलना है तुम्हें, और जरा जल्दी बोलना, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। मन ही मन ध्रुति उसके इस रवैये से कुढ़ गई, पर क्या ही उम्मीद रख सकती थी वो उस इंसान से जो उससे बेइंतहा नफरत करता हो। ध्रुति ने उसे देखा और गंभीरता से बोली, मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा क्या किया है मैंने जो आप इतनी नफरत करते हैं मुझसे और ऐसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, मुझे चोट पहुंचाने के लिए, और पहुंचा रहे हैं आप मुझे चोट। आपने मेरी माँ को निशाने पर रखकर मुझे शादी के लिए मजबूर किया, और मैंने आपसे शादी भी कर ली, आपकी नफरत भी सह रही हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर जाने दिया जाए, मुझे मेरी माँ से मिलना है, और शादी से पहले मैं जॉब करती थी उसे भी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि सारा दिन खाली घर बैठना मेरे बस की बात नहीं। मुझे आपके इस सोने के पिंजरे से आज़ादी चाहिए, ताकि जैसे पहले मैं पैसे कमाकर अपना घर संभाल रही थी वैसे आगे भी कर सकूं। और एक बात, आपको पहले जो करना था आपने कर लिया, पर अब मुझे किसी चीज़ के लिए मजबूर करने के लिए आप मेरी माँ को निशाने पर नहीं लाएंगे। ध्रुति अपनी बात कहकर खामोश हो गई। अर्णव चेहरे पर सख्त भाव लिए खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर उठते हुए बोला, अर्णव सिंह रायजादा किसी और के इशारों पर नहीं चलता, वो वही करता है जो उसे करना होता है। अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी फैमिली बीच में ज़रूर आएगी, और अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें दोबारा बीच में ना लाऊं या अपनी नफरत की बलि ना चढ़ाऊं तुम्हारी माँ को, तो तुम्हें मेरी हर बात खामोशी से माननी होगी। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ भी भुगतेगी। अर्णव ने धृति को धमकी देने के बाद उसे चेतावनी भरी निगाहों से देखा, फिर आगे कहना शुरू किया, तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना है तो जा सकती हो, नौकरी भी कर सकती हो, पर याद रहे कि मेरे लौटने से पहले तुम मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर तुमने मरने की या भागने की कोशिश की तो तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुप जाओ, पर मैं तुम्हें ढूंढकर वापस यहीं लाऊंगा और वो हाल करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कि खून के आंसू रोओगी तुम और कोसोगी उस पल को जब मुझे धोखा देने और यहाँ से भागने का ख्याल तुमने अपने मन में आने दिया। और एक बात, मेरे इस सोने के पिंजरे से तुम्हें तब तक रिहाई नहीं मिल सकती जब तक कि मैं नहीं चाहता। अर्णव ने अपनी बात कही और तेज कदमों से वहाँ से चला गया। धृति ने ठंडी आँख भरी और उठकर कमरे में चली गई। आखिरकार वो अपने घर जा सकती थी। इस बात से वो खुश थी, पर चिंता भी थी कि उन्हें क्या बताएगी। सुकून भी था कि घर से बाहर तो जा सकेगी और अपने परिवार के लिए पैसे भी कमा सकेगी। अभी वो इन्हीं सब ख्यालों में घूम थी जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। धृति तुरंत दरवाजे की ओर घूम गई। सामने फिर माधुरी खड़ी थी। उसने आने की इजाज़त मांगी तो धृति ने सिर हिला दिया। माधुरी आज फिर कुछ शॉपर्स लेकर आई थी, जिसे उसने सोफे के सामने वाले टेबल पर रखते हुए धृति से कहा, मैम ये कुछ कपड़े हैं जो सर ने भेजे हैं आपके लिए, आप देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो दूसरे आ जाएंगे। धृति ने अब सारे शॉपर्स खोलकर देखे, उनमें सूट और साड़ियाँ थीं। सूट बिल्कुल उसके साइज के हिसाब से थे, देखने में ना ज्यादा महंगे लग रहे थे ना ही सस्ते। कुछ इसी प्रकार के सादे कपड़े वो खुद भी पहनती थी। धृति ने कपड़े देखे, फिर आश्चर्य भरे निगाहों से माधुरी को देखते हुए बोली, ये कपड़े आपके सर ने भेजे हैं? जी, उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन आउटलेट्स ले आऊं, तो मैंने ये ड्रेसेस पसंद किए हैं आपके लिए, होप्सो कि आपको पसंद आए हों, अगर ना आए हों तो बता दीजिए, मैं दूसरे ले आऊंगी। धृति ने उसकी बात सुनी, फिर फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं, आपकी पसंद और मेरी पसंद काफी मिलती है, थैंक यू मेरे लिए कम्फर्टेबल कपड़े लाने के लिए। इट्स माय ड्यूटी मैम, माधुरी ने सौम्यता से जवाब दिया और मुस्कुराकर आगे बोली, मैम सर ने कहा है कि आप बाहर जा सकती हो, पर आपको जहां भी जाना होगा कार से जाना होगा और ड्राइवर आपके साथ रहेगा, शाम से पहले आपको वापस लौटने को कहा है। धृति की जिंदगी को अर्णव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर धृति ने बहस न करते हुए हामी भर दी। माधुरी कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, मैम क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? जी, धृति असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। माधुरी ने उसकी इजाज़त मिलने के बाद गंभीरता से सवाल किया, मैम क्या आप पहले से सर को जानती हैं?
नहीं, मैंने ना तो पहले कभी उनका नाम सुना है और न ही परसों से पहले उन्हें कभी देखा था। फिर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं, बताया नहीं है उन्होंने, और मैं याद करने की कोशिश करते करते थक गई, पर मुझे कुछ याद नहीं आया। क्या कल फिर से सर ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? माधुरी के मुंह से फौरन ये सवाल निकल गया। इसे सुनकर धृति पहले तो कुछ असहज हो गई, फिर शर्मिंदगी से निगाहें झुकाते हुए इनकार में सिर हिला दिया। माधुरी ने अब चैन की सांस ली और धृति के शर्मिंदगी से झुके सिर को देखते हुए बोली, मैम जब गलती आपकी नहीं तो आपको शर्मिंदा होने या नजरें चुराने की कोई जरूरत भी नहीं है, और मेरी माने तो अगली बार जब वो आपके साथ ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करे तो लैंप उठाकर उनके सर पर दे मारिएगा, अकल एक ही बार में ठिकाने आ जाएगी और दोबारा कभी आपको आपकी इजाज़त के बिना हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। माधुरी काफी सीरियस लग रही थी, वहीं धृति उसकी बात सुनकर हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके अचंभित सी उसे देखने लगी थी। माधुरी ने उसका एक्सप्रेशन देखा तो तुरंत ही आगे बोली, आप मुझे ऐसे इसलिए देख रही हैं क्योंकि मैं अपने ही बॉस के लिए ये सब बोल रही हूँ, पर यहाँ मैं उनकी एम्प्लॉय बनकर नहीं बल्कि एक लड़की और इंसान होने के नाते ये बोल रही हूँ। गलत चाहे कोई भी करे, सजा मिलनी ही चाहिए ताकि वो दोबारा वो गलती करने की भूल से भी ना कर सके। याद रखिएगा कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ सीधे साधे कमज़ोर लोगों को दबाया जाता है और गलती पर खामोश रहने पर उसे बार बार दोहराया जाता है, इसीलिए अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी आपको, और सर की हिम्मत ज्यादा न बढ़े इसके लिए उनका सामना पूरी हिम्मत से करना होगा। माधुरी की बातें सुनकर धृति मुस्कुरा उठी। आप बहुत अच्छी हैं, फिर उस दानव के साथ काम कैसे करती हैं? क्या करें मैडम, ये पापी पेट के आगे मजबूर हूँ। जॉब छोड़ूंगी तो जीऊंगी कैसे? फिर बस सर का ही स्वभाव थोड़ा ढीला है, बाकी ऑफिस के सभी मेंबर काफी अच्छे हैं। एटमॉस्फेयर अच्छा है, सैलरी अच्छी है, तो सर को भी झेल लेती हूँ। माधुरी की बातें सुनकर धृति पहले तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखती नहीं, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ साथ माधुरी भी हंस पड़ी। कुछ देर हंसने के बाद माधुरी ने धृति की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, दोस्त बनेगी मेरी, दोनों मिलकर सर की खूब बुराई करेंगे। जो बातें आप किसी से नहीं कह सकेंगी वो मुझसे शेयर कर सकेंगी, और साथ ही मैं आपको आइडियाज भी देती रहूंगी कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है। धृति उसकी बात सुनकर कुछ पल सोचती रही, फिर उसके आगे बढ़े हाथ को थाम लिया। आप मेरी पहली दोस्त हैं, आपसे पहले मेरी कोई दोस्त नहीं रही। धृति की बात सुनकर माधुरी पहले तो चौंक गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आई प्रॉमिस आप मुझसे दोस्ती करने के अपने इस फैसले पर कभी पछताएंगी नहीं, और मैं एक अच्छी दोस्त साबित होंगी। धृति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। माधुरी ने धृति को अपना नंबर दे दिया, फिर वहाँ से निकल गई। धृति का फोन ऑफ था, इसलिए उसने नंबर को नोट करके रख लिया और एक सादा सूट लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल गई, जहाँ एक नई मुसीबत मुंह बाए उसका इंतजार कर रही थी। आगे क्या हंगामा होगा धृति के घर पर? क्या जवाब देगी धृति अपनी माँ के सवालों का? और क्या होगा आगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेरहम इश्क।